जब राम दुखों में पड़ सकते हैं, लक्ष्मण दुखों में पड़ सकते हैं, और मैं दुख से भरी हुई इस लंका में बैठ सकती हूँ, यहाँ मैं दुख पा सकती हूँ, तो और प्राणियों को सोचना चाहिए कि भाई आने वाला दुख आता है और आने वाला सुख भी आता है। इसलिए सुख और दुख के लिए मनुष्यों को मोहित नहीं होना चाहिए। इस शोक सागर से राम कब पार होंगे और कब पार करेंगे, ये तो वो ही जान सकते हैं। राक्षसों का वध हो और फिर मेरी प्राप्ति हो, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। वानर एक साल बीत गया है, केवल 2 महीने बाकी हैं। रावण ने मुझे 2 महीने का समय दिया है, अब 2 महीने के अंदर कैसे राम यहाँ समुद्र को पार करके आएंगे और कैसे युद्ध होगा कुछ समझ में नहीं आता। देखो हनुमान, विभीषण ने कई बार रावण को समझाया है, बड़ा अनुनय विनय किया है, और मुझे विभीषण की बेटी कला है, उसने मुझे बताया है, और कला को उसकी माँ ने कहा है, विभीषण की स्त्री ने कहा है कि तुम जाकर के सीता को सांत्वना दे दो। तो कभी कभी विभीषण की पुत्री आती है और मुझसे अकेले में कुछ बात कर जाती है। हनुमान यहाँ बस इतना ही कोई भीतर की बात बताने वाला तो है और कोई नहीं। मुझे ये भी मालूम चला है कि यहाँ अविंध्य नाम का एक मेधावी विद्वान राक्षस है, बूढ़ा है, वो रावण को कई बार अलग में समझाया है, पर ये रावण मानता नहीं। जिस प्रकार से मरने वाला व्यक्ति दवाई नहीं लेता, मरने वाला व्यक्ति अच्छी बात सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार से रावण हित की बात सुनना नहीं चाहता। मेरे मन में बार बार ये विचार आता है कि मैं राम जी से जरूर मिलूंगी, क्योंकि राम के विरह में मेरी अंतरात्मा बहुत शुद्ध हो रही है, और शुद्ध अंतरात्मा में अनेक प्रकार के गुण अपने आप ही पैदा होते हैं, उत्साह, पौरुष, बल, दयालुता, कृतज्ञता, ये राम में बहुत गुण है। 14,000 राक्षसों को अकेले ने मार दिया, बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं हुए, और कितने कितने उनके सामने कष्ट आए, उनमें घबराहट की कोई बात ही नहीं। इंद्र की पत्नी जिस प्रकार से सची थी, उसी प्रकार से हे वानर, मैं भी उनकी पत्नी हूं और उनके प्रभाव को जानने वाली हूं। राम रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर राक्षस रूपी अंधकार नष्ट होने वाला है, ऐसे मेरे मन में विश्वास हो रहा है। इतना कहकर सीता जी रोने लग गई और हनुमान जी ने उनको धैर्य दिलाते हुए कहा कि हे सीता जी, आपको रोते हुए देखकर मैं अपने उत्साह को शोक में बदल देता हूं। यदि राघव को ये पता हो कि आप लंका में हैं, तो वे अपनी सेना लेकर तत्काल लंका पर आक्रमण करेंगे। सीता जी, मेरे मन में एक बात आती है, आप बहुत देर से शोक कर रही हैं, बहुत दिनों से शोक कर रही हैं। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं अपनी पीठ पर बैठा कर अभी आपको राम जी के पास ले चलता हूं, और मेरी तो इतनी शक्ति है कि त्रिकूट पर्वत को यूं हिला करके उसको उखाड़ करके और इसी समुद्र के अंदर डुबो दूं, अथवा मेरे मन में ऐसा आता है कि आपको मैं पीठ पर बैठाकर प्रश्रवण पर्वत पर अभी ले चलो और दोबारा यहां आऊं, दोबारा यहां आकर इस लंका को समुद्र में डुबो दो, ताकि राम जी को सीता मिल जाए और लंका का विनाश हो जाए। लेकिन आप विलाप करते हैं, ये मुझसे सहा नहीं जाता है। आपके दर्शनों की इच्छा से राम जी वन में बैठे हुए हैं, आते वो आप मेरी पीठ पर बैठे, आप दोनों का शोक दूर हो जाएगा। आपको मेरी पीठ पर बैठा हुआ देख करके राम जी बहुत हर्षित होंगे। अतः जिस प्रकार से चंद्रमा रोहिणी को प्राप्त करते हैं, इंद्र शशि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से आज राम आपको प्राप्त करके प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके मन में ये संदेह हो कि तुम्हारे उड़ने पर यहाँ पीछे पीछे लंका के राक्षस चारों तरफ से घेर लेंगे और तुमको और हमको रोक लेंगे, ये आपके मन में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन राक्षसों को किसी प्रकार से मैं पकड़ाऊंगा नहीं और बहुत जल्दी मैं आपके पास आपको राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता जी की बात सुनकर के, हनुमान जी की ये बात सुनकर के सीता जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान बहुत दूर का रास्ता है, कोई मामूली दूरी नहीं है, तुम बातें बनाने में तो आज वास्तव में बंदर के बंदर ही निकले, तुम छोटे से शरीर वाले हो, तुम मुझे उठा करके ले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मानवेंद्र श्री राम के पास तुम मुझे कैसे ले जाओगे, छोटे से तो बानर हो। सीता जी के वचनों को सुनकर के हनुमान जी ने विचार किया कि लो ये एक हमारा तिरस्कार और कर दिया। नवे पराभव नवम पराभवम कृतम, ये हमारा एक तिरस्कार और हो गया। ओहो, सीता जी को पता नहीं है, आते वाज सीता जी को अपना विशाल रूप भी तो दिखाना चाहिए ताकि सीता जी को बड़ा संतोष हो। तब हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, सीता जी अब मैं अपना स्वरूप दिखाता हूं। ऐसा करके शतस्मात् पादपात् धीमान् आपूत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारे भी सीता प्रत्यय कारणात्। वो वृक्ष से ऊंचे, वृक्ष से कितने ही बड़े महान होंगे और सुमेरु पर्वत मंदराचल पर्वत के समान विशाल शरीर वाले होंगे, वो ऊंचे भी बढ़ रहे हैं और अपने अगल बगल में भी बढ़ रहे हैं। विशाल हनुमान जी महाराज का वो शरीर देखा कि पर्वत के समान है, तांबे के समान इनका मुख है और वज्र के समान इनके दांत है और वज्र के समान इनके नाखून है, बड़ा भीम रूप है इनका। भीम रूप दिखा करके हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता सीता देखो पर्वतों सहित जंगलों सहित बड़े बड़े महलों सहित बताओ मैं इस लंका को उठा सकता हूँ कि नहीं। आप मेरे शरीर बल पर विश्वास कीजिए, मुझ में अभी समय इतना बल आया है कि मुझे सारी लंका निर्बल मालूम दे रही है। हे सीता जी, केवल आज्ञा देने की जरूरत है, आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा देंगे वो करने में मैं समर्थ हूं। सीता जी ने इतना विशाल शरीर देख करके और फिर बड़े स्नेह से कहा, तब सत्यम अब मुझे विश्वास हो गया बेटा कि तुम्हारा शरीर बल और तुम्हारा मनोबल दोनों ही वायु के समान बड़े श्रेष्ठ हैं, अग्नि के समान तुम बड़े तेजस्वी हो, सामान्य प्राणी इस प्रकार से नहीं हो सकता। यहाँ हर कोई आदमी तो आ ही नहीं सकता है और इतना बड़ा ये सागर इसमें आने की शक्ति किसकी हो, नहीं हो सकती। और फिर तुमने इतना विशाल शरीर बताया है, इससे तो भाई कार्य सिद्धि निश्चित रूप से होगी। ओहो, आयुक्तम तो कपि श्रेष्ठ है, मया गंतुम त्वया सह। एक बात है, तुमने मुझे ये कहा ना कि मेरे साथ चलो, तो तुम्हारे साथ मैं चल नहीं सकूंगी क्योंकि तुम इतने विशाल शरीर से मुझे पीठ पर बैठा करके ले जाओगे, उस समय में जितने वेग से तुम ले जाओगे वो वेग मैं तो नहीं सहन कर सकूंगी, वायु के द्वारा वही गुड़का दी जाऊंगी और आकाश के आकाश से मैं सागर में गिर जाऊंगी। कोई उस समय मुझे बचा नहीं सकता है। सागर में मगरमच्छ वगैरह मुझे खा जाएंगे। फिर बात तो वही रही ना कि जो अभी हो रही है वही तो बात रही। दूसरी बात है, हनुमान तुम पुरुष हो और मेरा स्त्री का शरीर है। पुरुष के शरीर में बल होता है, स्त्री के शरीर में इतना बल नहीं होता। अतः मुझे मेरे शरीर पर संदेह है कि मैं तुम्हारे शरीर पर बैठ भी सकूंगी कि नहीं, इतना बल मुझ में नहीं है। और जिस समय तुम मुझे ले जाओगे उस समय में राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। पीछा करने पर तुम और तेज चलोगे। एक तो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक वेग और दूसरे में तुम राक्षसों के पीछा करने पर और तेज दौड़ोगे। उस वेग को सहन करना बड़ा मुश्किल है। और यदि राक्षस कोई तुमसे आगे निकल गए, तुम्हारे रास्ते को रोक लिए और शस्त्र लेकर के मारने लग गए, तुम्हारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं, फिर उस समय तुम मेरी रक्षा करोगे या तुम अपनी रक्षा करोगे? वे राक्षस तुमको भी मार देंगे, हमको भी मार देंगे। इसलिए उस राक्षसों के साथ युद्ध करना भी बड़ा कठिन होगा। अब तुम युद्ध में लग जाओ और मैं जरा से भी असावधान हुई और मैं जमीन में नीचे गिर सकती हूँ। ये राक्षस लोग मुझे मालूम है बहुत बलवान है। ये राक्षस लोग बड़ी माया जानते हैं, क्या क्या नहीं कर ले हुए। यदि मान लो तुम्हारे शरीर से मैं खिसकी और ये रावण भी पीछे रहा तो रावण वापस मुझे पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद फिर मुझे कहाँ ले जाकर रखेगा पता नहीं। और तुमको भी वो पकड़ लेगा, तुमको भी पकड़ लेगा, जेल खाने में ले जाकर रख देगा। इस प्रकार से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है और तुम्हें जेल खाना भी मिल सकता है। और मेरे लिए आज अशोक वाटिका तो है, कल जाने मुझे कैसे कैद खाने में ले जाकर के डाल दे। इसलिए आपका जो प्रयत्न इतनी देर का हो रहा है सब निष्फल हो जाएगा। सुग्रीव के जितने और बांधव लगे हुए काम में उन सबका प्रयत्न किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं जीवित ही नहीं हूँ तो फिर ये सब उद्योग क्या 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 होगा। एक बात और है, देखो हनुमान, यदि तुम मुझे ले भी जाओ तो भी इसमें राघव का यश नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका यश कम होगा। लोग कहेंगे कि देखो रावण रावण राम की पत्नी को ले गया, ये तो हनुमान था इसलिए सीता को ले आया, ये तो राम को राम की पत्नी तो गई थी, इसमें हमारे राघव का अपमान होगा। इसलिए तुम मुझे पीठ पर यहाँ लाते हो तो तुम जल्दी से जल्दी जाकर के राम और लक्ष्मण को यहाँ पीठ पर ले आओ और यहाँ पर पीठ मिला करके तुम बाण छोड़ छोड़ को मारो और फिर मैं राम लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ से अयोध्या जाऊँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आरंभस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थः। इसलिए देखो संसार में कीर्ति भी तो एक चीज होती है ना। हमने त्याग किया है तो अयोध्या का किया है, धर्म का नहीं किया है। हमने इतना संताप उठाया है तो वो हमने हमारा धर्म है इसलिए हमने किया है। परंतु यदि हमने कीर्ति को प्राप्त नहीं किया, यश को प्राप्त नहीं किया और इस धर्म को हमने दूसरों के हृदय में स्थापित नहीं किया तो जो है ही हनुमान, इसमें तो राम की प्रतिष्ठा नहीं है ना। त्वया हि स रामस्य महान आगमन गुण है। राम तो यहाँ तुम्हारे साथ आए उसी में ही सबसे बड़े लाभ की बात है। भाई भी आगे उनके और राम जी यहाँ सेना लेकर आए, भरत जी सेना के साथ आवे तो कोई बात भी बने, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि तुम मुझे चुपचाप यहाँ से ले जाओ। और ले भी गए तो भी यश नहीं है, पहली बात ले जाने भी नहीं देंगे। और एक बात और कैसे कहती हूँ, भर्तुर्भक्ति पुरस्कृत, मैं अपने पति में विशेष अनुराग रखता हूँ, इसलिए राम के अतिरिक्त और किसी पुरुष का मैं स्पर्श भी नहीं करना चाहता हूँ। अतः तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके मैं वहां जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो तो राम जी के लिए अच्छा नहीं, ये मेरे लिए, मेरा धर्म नहीं बोलता। रावण तो मुझे बलपूर्वक ले आया, मैं क्या करता, लेकिन रावण के लाने के अपेक्षा रावण के लाने के कारण से मैं विवश थी, परतंत्र थी, लेकिन तुम्हारे साथ जाऊं या न जाऊं इसमें तो मैं स्वतंत्र हूं ना। तो मैं स्वतंत्रता से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करते हुए कैसे मैं राम जी के पास जा सकती हूं? उचित नहीं। राम के लिए उचित तो यही है कि वो यहाँ आए और यहाँ रावण से युद्ध करें और फिर मुझे ले जाएं, उनके साथ में यहाँ से जाऊं। राम के लिए यही उचित है। और राम के मैंने बहुत पराक्रम देखे हैं। ऐसे राम के समान पराक्रम देवताओं में, गंधर्वों में, नागों में, राक्षसों में कहीं भी नहीं है। अरे हनुमान जिससे वो धनुष चढ़ा करके और उस धनुष को यूं घुमाते हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सब दिशाओं में बाण निकलते हैं, जिस प्रकार से अग्नि के अंदर लोहे निकलती हैं और की चट 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 करते करते चिंगारियां निकलती हैं, इस प्रकार से वे बाण को धनुष को गोल करके बाण चारों तरफ से फेंकते हैं और हजारों की संख्या में बाण कब छोड़ते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। लक्ष्मण जी का भी बड़ा विलक्षण प्रभाव है। हम तो जानते हैं कि लक्ष्मण और राम का जो बाणों का वेग है ये लंका वासी बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। कुरुश्वमेव नरवीरः हर्षितः, अब तुम जाओ और राम जी के पास जाकर के यहाँ आने की बात सोचो, यहाँ लाने की बात सोचो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। अब हनुमान जी महाराज सीता जी से बहुत विशेष बात कहते हैं। और भाई अब जो ये प्रसंग आएगा ना, इस प्रसंग को कहने में भी संकोच होता है, पर राम जी का प्रसंग है। जिस प्रकार देखो सब रामायण में कुछ न कुछ ऐसा प्रसंग आता है, ये प्रेम का प्रसंग है। और ऐसे प्रेम का प्रसंग है वो, जैसे भागवत में चीरहरण का प्रसंग आता है, गोपियों के वस्त्र भगवान ले जाते हैं, नाती हुई गोपियों के वस्त्र भगवान ले जाते हैं, रासलीला का प्रसंग है। ऐसे ये एक प्रेम का विचित्र प्रसंग है। इस प्रसंग में सीता जी के प्रति राम का और राम के प्रति सीता का जो प्रेम है, उस प्रेम को सीता जी प्रकट कर रही है। परंतु प्रेम के जो साधन है वो तो लौकिक में ही है, अतएव राम में और सीता में बिल्कुल निर्विकार दृष्टि रखते हुए ये प्रसंग सुनना है। क्योंकि हनुमान जी महाराज को बहुत देर के बाद ये प्रसंग सुनाया है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने भी बहुत प्रसंग सुनाने के बाद परीक्षित को रासलीला सुनाई, ऐसे ही हनुमान जी की बहुत परीक्षा हुई है, बड़ी बातें हुई है और हनुमान जी ने बड़ी गुप्त बातें कही हैं, तब जाकर सीता अपनी बात बोलती है। तो वहाँ क्या है कि कभी कभी ये जो बातें देख करके लोग समझते हैं कि ये क्यों कही गई, क्यों लिखी गई और ऐसा राम जी ने क्यों किया अथवा ऐसा सीता जी ने क्यों किया, ये नहीं देखना चाहिए। प्रेम के अंदर क्यों, कैसे, कब ये बातें नहीं चलती हैं। इसलिए बहुत सावधानी से ये प्रसंग सुनने का है और इस प्रसंग के अंदर भाई अपनी बुद्धि को बहुत निर्मल रखना है। अपने यहाँ मर्यादा भी है, महाराष्ट्र की स्टेज की मर्यादा है, मंच की मर्यादा है कि बहुत मर्यादा में बोलना चाहिए। तो भाई वैसी मर्यादा तो हमारे पास है नहीं, परंतु कहीं कहीं हम इशारों में बोलते चले जाएंगे, वो इशारा ही मर्यादा समझ लेनी चाहिए। और ये देखना है कि राम है वो सीता के प्रति कितना प्रेम करते हैं और सीता राम के प्रति कितना प्रेम करती है। ये राम और सीता का जो अद्भुत अलौकिक प्रेम है, वो प्रेम ही वास्तव में हनुमान जी को मिला। ये दो प्रेमियों का जो प्रेम है, राम और सीता का जो प्रेम है, वो हनुमान जी को सुनने को मिला है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज भगवान के सबसे निकटतम अंतरंग प्रेमी माने जाते हैं। आपने जो बातें कही है कि मैं स्त्री हूँ, वायु के वेग से कहीं गिर जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। उससे भी बड़ी बात आपने जो ये कही कि मैं साध्वी हूँ, पतिव्रता हूँ और राम के अलावा मैंने किसी का स्पर्श किया नहीं है। मैं थोड़े से राम जी के दर्शन के लोभ में आकर और अपने संताप से हटने के लिए तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके मैं वहाँ पहुँचूं, ये मेरे गरिमा के खिलाफ चीज है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सो योजन विस्तीर्ण सागर को पार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, परंतु जो आप जैसी पतिव्रता स्त्री ऐसी बात बोलती हैं, इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैं आनंद में डूब गया। मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ कि जैसे राम वैसे उनकी पत्नी सीता। मैंने तो आपको विशेषता से दुखी देख करके ये बात कही थी, अन्यथा आपके विचार में मेरा विचार पूर्णतः सहमत है। लंकाया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वात् च महोददेः सामर्थ्यात् आत्मनश्चैव मयैतत् समुदीरितम्। आपके मन से मैंने ये बात निकालने के लिए कही है कि लंका में कोई प्रवेश कर नहीं सकता है, लंका में किसी के आने की सामर्थ्य नहीं है और समुद्र का पार करना बड़ा मुश्किल है। इन बातों से आप डर रही थी ना, वो डर निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था। अब मैं राम जी के पास जा रहा हूँ। अब आप भी कोई मुझे ऐसा अभिज्ञान दीजिए, ऐसी कोई पहचान दीजिए, जैसे राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, आप भी मुझे कोई ऐसा अभिज्ञान दो कि जिससे राम जी विश्वास कर लेवे कि मैं आपके पास जाकर आया हूँ। सीता जी विचार करके कहने लगे। अब देखो यहां सावधानी से सुन। सीता जी ने कहा कि देखो सबसे पहले मैं एक लीला का प्रसाद तुमको देता हूं। कितना राम जी में हमने प्रेम किया था। एक बार चित्रकूट के ईशान कोण की तरफ बड़ी सुंदर जो मंदाकिनी नदी बहती है, वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, फल फूल से भरा हुआ वो आश्रम था। और मंदाकिनी बड़ी बढ़िया बड़ी कलकल करती हुई बह रही थी, पुष्पों की बड़ी सुगंध आ रही थी। और राम जी स्नान करके आए और स्नान करके वे मेरी गोद में बैठ गए थे। यह एक घटना तुम राम जी को सुना देना। दूसरी की घटना है कि एक बार उसी चित्रकूट पर वह वायस माने एक कौवा आया। वो कौवा मेरे शरीर के मांस का लोभी था। मैं उसको बार बार हटाती हूँ, लेकिन वो बार बार आता है और मेरे शरीर को नोच नोच करके जाता है, शरीर में खरोंच पैदा करता है। उसके मन में मेरे शरीर के मांस खाने की इच्छा थी। मैंने उसको उड़ाया भी और मैंने उसके तरफ पत्थर वगैरह फेंका भी, डोरी लेकर के भी मैं उसको तरफ जो है उसको उड़ाया, तो भी वो कौवा किसी प्रकार से दौड़ के वापस आ जाता था। उस समय में जब मैं उसके पीछे दौड़ रही थी, तो मेरा जो वसन था, कपड़ा था, वो अस्त व्यस्त हुआ। तो उसी समय में भगवान कहीं से बाहर से गए हुए आए और मैं लज्जित हो गई। ये बात भी जाकर उनको बोल देना। और ये बात भी बोलना कि कौवे से परेशान जब मैं हो गई, तब राम जी ने उस कौवे को उड़ाया। वो कौवा उड़ करके चला गया और फिर उसके बाद राम जी को नींद आने लगी, मुझे नींद आने लगी। जब मुझे नींद आई तो मैं राम जी की गोद के अंदर सिर रख करके सो गई। तब कोई कौवा नहीं आया। लेकिन जब राम जी को नींद आने लगी और मेरी नींद पूरी हो गई, तब राम जी जो है मुझे जगाए और फिर राम जी की गोद राम मेरी गोद में सो गए। तब वो कौवा आया और पुनः पुनः बार बार विदार है वो बार बार आकर के मेरे शरीर पर चोंच से और अपने पंजे से वो प्रहार करने लगा। मेरे शरीर से खून की बूंदें निकली। इतने में राम जी की नींद पूरी हो गई और नींद पूरी होने के बाद राम जी ने मुझसे क्रोध में भर करके कहा कि सीते बताओ तुम्हारे वक्षस्थल पर ये क्या हुआ है, किसने ये खून निकाला है, क्या बात है मुझे बताओ, कौन ऐसा है जो मेरे पांच मुख वाले बाण के द्वारा अपने प्राणों को नष्ट कर देना चाहता है। तुम्हारे शरीर पर नक्का स्पर्श करना, चोंच लगाना और तुम्हारे शरीर से खून निकालना कितना बड़ा दुस्साहस किया है। सीते हो मैं समझ गया हूँ, ये इंद्र का बेटा कौवा बन करके आया है। अभी मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है, ये पृथ्वी के अंदर भी धस जाएगा तो भी मेरा बाण इसे पीछे छोड़ने वाला नहीं है। उस समय में मैं जब बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, राम जी के मन में भी बहुत क्रोध आया था, तब उन्होंने एक तिनका लिया, तिनका लेकर के उन्होंने उसमें ब्रह्मास्त्र की भावना की और ब्रह्मास्त्र की भावना करके उसको उस तोते के पीछे फेंका। फेंकने के बाद वो एक ब्रह्मास्त्र बन गया, एक बहुत अग्नि का पुंज बन गया और वो उस कौवे के पीछे 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 दौड़ता रहा। आगे आगे कौवा है, पीछे पीछे वो ब्रह्मास्त्र है। कौवा डर गया, आकाश में गया, वहां भी उसको शरण नहीं मिली। वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने भी उसको अपने यहाँ शरण नहीं दी। फिर वह ऋषियों के पास त्रिलोकी में सब जगह घूमने के बाद शायद किसी ने सलाह दे दी, तुम जाओ राम की शरण में जाओ, तब वो आपकी शरण में आया। और आपकी शरण में आने के बाद आपने कहा कि देखो हे वायस, तुम यद्यपि वध के योग्य हो, मेरा ये अस्त्र भी तुमको मारने के लिए ही फेंका था, परंतु जब तुम दुखी होकर मेरी शरण में आ गए हो तो ये अस्त्र भी व्यर्थ न जाए, तुम्हारी रक्षा भी हो जाए, अतएव तुम्हारी एक आंख नष्ट कर दी जाती है। तब उसके बाद उसकी दाहिनी आंख नष्ट कर दी गई और उसके बाद उसकी राम जी ने रक्षा की। वह दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके और अपने स्थान पर चला गया। एक कौवे के और वो भी इंद्र का बेटा था, उसको भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे फेंका था। आज मुझे पूरे का पूरा ही रावण ले आया है और रावण मेरे पूरे शरीर को काटने के 2 महीने की अवधि दे चुका है। यहाँ राम जी किस प्रकार से रावण को क्षमा कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। मैं नाथपति होकर अनाथ की तरह से हूँ और देखो हनुमान, मैं उनके बल और पराक्रम को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। इधर ये सागर भी तो अपार अक्षोभ्य है, सागर को भी देख रही है। ये बलवान सत्यवान श्रीराम कैसे इस सागर से पार होकर के आए हैं? युद्ध के अंदर साक्षात तो भी किसी से पराजित होने वाले नहीं है, चाहे नाग हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता हो, चाहे मरुदगण हो, कोई उनके सामने ठहर नहीं सकता है। परंतु बस इतनी बात है कि सागर को पार करना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे पार करेंगे? और किमर्थम न चरेष तीक्ष्ण ही, और जब तक राम जी यहाँ नहीं आएंगे तब तक कैसे ये राक्षस मारा जाएगा, यही एक चिंता की बात है। अपने भाई के आदेश को लेकर लक्ष्मण भी किस प्रकार से राम जी की रक्षा करेगा, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि राम स्वयं चिंतित हो रहे हैं, तो स्वयं चिंतित है इसलिए उनको लक्ष्मण किस प्रकार से चिंता से मुक्त कर सकता है। पराक्रम में इन दोनों के बराबर मैं किसी को नहीं समझती हूँ, लेकिन आज क्या हो रहा है इनके पराक्रम को, इनके पराक्रम को राहु ने ग्रस्त कर लिया, क्या बात है। मेरा ही कोई कोई पाप हो सकता है हनुमान, इसमें संदेह नहीं है। तभी तो उनके सामर्थ्यवान पति के रहते हुए मेरी आज ये दशा हो रही है। सीता जी के कारुणिक वचनों को सुनकर के हनुमान जी ने कहा कि देखो देवी, मैं सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ, तुमको ऐसा लगता होगा कि राम और लक्ष्मण कोई उद्योग नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। राम स्वयं दुख में डूबे हुए हैं और राम के दुख से लक्ष्मण दुगने दुख में डूबे हुए हैं। किसी प्रकार से आप यदि एक बार उनके ध्यान में आ जाती तो वे काल को भी किसी प्रकार छोड़ने वाले नहीं है। और अब मैं यहाँ से जाऊंगा, जाने के बाद फिर राम और लक्ष्मण ये बहुत जल्दी उत्साहित होकर लंका की ओर आ रहे हैं। रावण अकेला नहीं, भाई बंधुओं से मारा जाएगा। जिन जिन ने तुम्हारे हरण का पक्ष लिया है उनका कोई भी परिवार भी बाकी रहने वाला नहीं है।